मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, मुख्य विषय के तहत जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मैं उसे ही कंटिन्यू करना चाहूंगा, लेकिन एक अलग ही नए अंदाज में। तो बेहतर होगा कि पहले दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं, खबरों को देख लेते हैं, फिर इस नए अंदाज की चर्चा अपन करेंगे। अखबारों में आपने एक खबर पढ़ी जो एक दुखद खबर है, लेकिन बहुत ही चिंतनीय खबर है और विचार करने लायक है। खबर यह है कि उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री बकायदे एक प्रोग्राम में जा रहे थे और उनके अपने ही सुरक्षाकर्मी ने उन्हें गोली मार दी और उनका निधन हो गया। यहां दो तीन पॉइंट हैं। देखिए, यहां मैं जो आपको तथ्य बताने जा रहा हूं, एक दो पॉइंट्स आज जो भी आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाली घटनाएं नहीं है, खबरें नहीं है। बिल्कुल एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा कि कहां के स्वास्थ्य मंत्री की हत्या की गई, किसने की, क्यों की, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। मैं उड़ीसा के स्टेट सिविल सर्विस की बात नहीं कर सकता, लेकिन वहां भी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, समाज के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, नैतिकता के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सिविल सर्विस की तैयारी की दृष्टि से वे घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि उन घटनाओं को बेस बनाकर मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन घटनाओं को बेस बनाकर सच पूछिए तो इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में भी प्रश्न वहीं से आते हैं, वहां क्वेश्चन आंसर की प्रणाली नहीं होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू अब शुरू हो रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी बात मैंने इसकी भी कर दी है। तो दोस्तों, ये जो घटनाएं होती हैं, ये हमारा मार्गदर्शन इस रूप में करती हैं, हमारा मार्गदर्शन यानी कि सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए हमारा मार्गदर्शन इस रूप में करती हैं कि अच्छा, ये बात है, ये घटना घटी है, तो इस घटना की थोड़ी सी गहराई में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है। देखिए, हो सकता है कि इस पर न भी पूछा जाए, ज्यादातर यही होगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये हमारी आदत होनी चाहिए। क्योंकि जब हम इस तरह की आदत के तहत काम करते हैं, यानी कि तैयारी करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो एक्टिवेट होता है और सच पूछिए तो इस लायक बनता है कि हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सके। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि इस घटना में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। जब आप इस पर विचार करेंगे तो कौन कौन से एंगल निकल करके आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री की हत्या का होना, आप सोच करके देखिए कि सुरक्षा की कितनी बड़ी चुनौती खड़ा कर रहा है, बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री तक सुरक्षित नहीं है तो आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित हो सकता है। दूसरी बात यह कि उनके अपने सुरक्षाकर्मी ने गोली मारी है, यहां नैतिकता का भी सवाल है कि एक जो सुरक्षाकर्मी है वह पुलिस विभाग में काम करता है और उसने गोली मार दी, मतलब आप अपनों पर ही विश्वास नहीं कर सकते, तो यहां से फिर एक नैतिकता और विश्वास का संकट जो हमारे समाज में धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा है वह भी खड़ा हो रहा है। तीसरा कि जिस व्यक्ति ने यह कदम उठाया उसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, क्या कुछ निजी कटुता थी, प्रतिशोध की भावना थी। जैसा कि अभी तक अखबारों में आपको पढ़ने को मिल रहा होगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था, तो फिर अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था, 8-9 महीने से वो इसका इलाज करा रहा था, तो फिर उसे इस काम में क्यों रखा गया, सुरक्षा जैसे काम में क्यों लगाया गया, दूसरे और भी बहुत से काम होते हैं, तो फिर हमारा प्रशासन किस तरह से निर्णय ले रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने सारे सवाल एक ही घटना से उठ करके खड़े हो रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये बन रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया में मनोरोगियों की संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हैं मनोरोगियों की संख्या, तो मनोरोग एक टॉपिक हो सकता है, थोड़ा सा बहुत ही व्यावहारिक किस्म का टॉपिक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है कि इनमें क्यों बढ़ोतरी हो रही है, कैसे इनमें कमी लाई जा सकती है, क्या क्या उपाय सरकार ऑलरेडी कर रही है, इस तरह के पॉइंट्स बकायदे आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपने हमारे विदेश मंत्री जी का सुना होगा, जयशंकर जी का। उन्होंने डिप्लोमेट पर एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे जो हनुमान जी थे और हमारे जो कृष्ण जी थे वो क्या कम अच्छे डिप्लोमेट हैं, हमको दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हनुमान है और हमारे पास कृष्ण है और वो बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, और अगर व्यक्ति के रूप में, ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में ले तो चाणक्य हमारे पास हैं। जी हाँ, चाणक्य उनकी जो पुस्तक, जो ग्रंथ कहना चाहिए, पुस्तक नहीं, जो अर्थशास्त्र है, उसमें देखिए कि उन्होंने किस तरीके से बड़े विस्तार के साथ बड़ी छोटी छोटी बातें सामने रखी हैं, एकदम छोटी छोटी बातें। ठीक है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य के बारे में ही बातें कर रहे हैं उस समय, उसे आप अब राष्ट्र में कन्वर्ट कर दीजिए तो बिल्कुल सारी के सारे डिप्लोमेटिक थ्योरीज निकल करके आ जाएंगी। मुझे सच पूछे तो जब मैं ये वाक्य पढ़ रहा था तो बड़ी खुशी हुई, खुशी इस मायने में हुई कि हनुमान जी पर जो मैंने किताब लिखी है सदा सफल हनुमान, उसमें उनका जो डिप्लोमेटिक जो करेक्टर है वो मैंने इस्टेब्लिश किया है कि किस तरीके से वो काम करते हैं। क्योंकि वो जब श्रीलंका जा रहे हैं सीता मैया का पता लगाने, तो वहां बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से वो बात करते हैं, काम लेते हैं, और रावण के दरबार में जब उनको पेश किया जाता है तो मैंने बताया कि कैसे वो वहां डिप्लोमेटिक तरीके से पहुंचते हैं कि सीता जी से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है और मुझे आप उद्यान में जाने की इजाजत दे दें, और फिर वहां से किस तरीके से वो रावण के दरबार में पहुंचते हैं और रावण के दरबार में कितने डिप्लोमेटिक तरीके से वो बात करते हैं और अंततः श्रीलंका में आग लगा करके लौट आते हैं। तो ये जो हमारे चरित्र हैं, अब आप देखिए कि कैसे नई नई तरह की उनकी व्याख्या हो रही है। और कृष्ण के बारे में तो आप जानते ही हैं, कृष्ण को आधार बना करके मैंने अभी गीता पर पुस्तक लिखी है, अभी छप करके आने में 3-4 महीने लगेंगे। तो दोस्तों, यहां खासकर जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि जब आप इस तरह के वक्तव्य सुनते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर तक उन वक्तव्यों पर विचार करें। तो सोचिए कि भाई अगर हमारे विदेश मंत्री ने यह बात कही है तो किस आधार पर कही होगी। कुछ बातें तो आपको अखबारों में पढ़ने को मिल भी जाएंगी, अगर 1-2 लाइन भी आपको पढ़ने को मिल जाती है तो आप मान करके चले कि वो सूत्र है, उस धागे को पकड़ लीजिए, सिरा मिल गया ना आपको, अब उस सिरे को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ये क्षमता आप में होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट थे ये मुझे आपके सामने रखने थे। आज मुख्य विषय के तहत जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं वो एक फिल्म है। अभी एक फिल्म आई है, सुना होगा आपने, शायद देखी न हो, और वो फिल्म है गांधी गोडसे एक युद्ध, कुछ इसी तरह का नाम है, लगभग गांधी गोडसे एक युद्ध, ये फिल्म आई है। क्योंकि इसी दौर में पठान फिल्म आ गई है तो ये गांधी गोडसे ये वाली जो फिल्म है ये काफी कुछ दब गई है। लेकिन चलिए अब आप देखिए कि ये इतिहास का विषय है, गांधी गोडसे इतिहास के विषय है। गांधी तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में ही है 1915-16 के बाद से, जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आते हैं, और यहां से गांधी का हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश होता है और गोडसे के द्वारा गोली चलाए जाने से उनके जीवन का अंत हो जाता है। खासकर इस फिल्म में एक स्वप्न चित्र बुना गया है और उसमें गांधी और गोडसे की बातचीत दिखाई गई है। दोस्तों, जब ये फिल्म शूट हो रही थी, भोपाल में ये फिल्म शूट हुई है, तो असगर वजाहत जो इसके लेखक हैं वो आए थे, और असगर वजाहत जिसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, मैं जब दिल्ली में रहता था वो तो दिल्ली में रहते ही हैं, असगर वजाहत जिससे मेरी काफ़ी पुरानी पहचान है, जब हम लोग दिल्ली में थे तब उनसे मुलाकात होती थी, और जब मुझे पता लगा कि वो यहाँ आए हैं तो मैं सद्भाववश उनके सम्मान में उनसे मिलने गया था, और लगभग 1-1.5 घंटे तक हम लोगों की इस फिल्म पर बात होती रही। वो फिल्म की शूटिंग देखने आए थे और कुछ बातचीत के लिए भी शायद आए होंगे। खैर, मैं अब उस पर नहीं जा रहा हूं। आपको क्या करना चाहिए, आपको करना यह चाहिए, यदि संभव हो सके तो आप ये फिल्म देखें, लेकिन इतिहास के नजरिए से न देखें। मैं अंडरलाइन कर रहा, इतिहास के नजरिए से न देखें। वहां आप इतिहास की किताब नहीं पढ़ रहे हैं और न ही इतिहास की किताब को ज्यों का त्यों वहां फिल्माया गया है। वो एक फिक्शन है, फिक्शन बट बेस्ड ऑन रियलिटी। गांधी और गोडसे के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो आप सुनेंगे, उन्हें आप ऐतिहासिक सत्य मत मान लीजिएगा, इसीलिए वो स्वप्न दृश्य रचा गया है। स्वप्न की बातें एकदम सच नहीं होती, लेकिन एकदम सच से परे भी नहीं होती, लेकिन चूंकि दोनों ऐतिहासिक पात्र हैं, बातचीत के दौरान जो घटनाएं सामने आएंगी उनमें भी सच्चाई होगी। लेकिन होता यह है कि अगर 80% भी सच्चाई हो और अगर उसमें 20% भी मिलावट कर दी जाए तो आपके लिए यह छांटना मुश्किल हो जाएगा कि वो 20% कौन सा है जिसे आप खोट कहेंगे, मुश्किल हो जाएगा ना। तो या तो आप 100% को मिलावट मान लेंगे, या फिर पता लगा कि जो सच है उसको मिलावट मान लेंगे, जो मिलावट है उसको आप सच मान लेंगे, और उसे सारा गड़बड़ झाला हो जाएगा। तो आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं कि सर फिर इस गड़बड़ झाले के लिए आप हमें फिल्म देखने के लिए क्यों उकसा रहे हैं। मैं सिर्फ एक उद्देश्य से उकसा रहा हूं, और खासकर वह उद्देश्य जिस टॉपिक पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, विचार कैसे करें। आपको चाहिए कि आप वो फिल्म देखें। गांधी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और गोडसे अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। गोडसे की एक किताब भी आई है, मैंने गांधी को क्यों मारा, खासकर जब केस चल रहा था तो गोडसे ने न्यायालय में अपने पक्ष में जो वक्तव्य दिए हैं उनका कलेक्शन, मैंने गांधी को क्यों मारा, इसी तरह का एक नाम है। बहुत ही पतली सी किताब है, मैंने पढ़ी है। तो आप देखिए कि कैसे दोनों अपने अपने पक्ष में कितने प्रबल तर्क दे रहे हैं, अकाट्य जैसे तर्क दे रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं गोडसे सही है, आपको लगेगा कि गांधी सही, आपको लगेगा कि गोडसे गलत है, आपको लगेगा कि यहां तो गांधी गलत है, इस तरह की बातें लगेंगी। यही तो तर्क है, यही तो सोचना है, यही तो विचार करना है कि जब हम किसी बात पर विचार करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी बात को कितनी प्रबलता के साथ, कितनी स्पष्टता के साथ, कितने तीखेपन के साथ इस प्रकार रख पाते हैं कि सुनने वाला हम पर यकीन करने लगता है। और आपके लिए सुनने वाला कौन होगा? आपका एग्जामिनर। मुझे लगता है कि इस फिल्म को जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो आपको एक दृष्टि मिलेगी, एक तीखापन मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज कोशिश करें कि आप इस फिल्म को देख सके, और देख कर आने के बाद यदि आप अपने विचारों से मुझे अवगत करा सकेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं, प्रतिभा राठौर वाराणसी से और रविकांत वर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।